ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रतिवेदन 2082 राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के समक्ष किए गए प्रस्तुत। निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न होने से लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, ऐसा राष्ट्रपति का है विश्वास। आगामी 3 दिनों में कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश में भारी वर्षा, आंधी और हिमपात की है संभावना। आवश्यक सतर्कता अपनाने का राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण का आग्रह। और ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जारी, इसराइल पर किया 64वां हमला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के समक्ष निर्वाचन आयोग ने गत फागुन 21 को संपन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2082 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति पौड़ेल के समक्ष राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज आयोजित कार्यक्रम में आयोग के कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने प्रतिवेदन पेश किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हुआ है तथा आयोग ने अपनी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाई है। उन्होंने कहा कि इससे आयोग और निर्वाचन प्रणाली के प्रति आम नागरिकों का विश्वास बढ़ा है और लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। राष्ट्रपति पौड़ेल ने कठिन और जटिल परिस्थितियों के बावजूद पूरे समर्पण के साथ निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर खुशी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग, राष्ट्र सेवक कर्मचारियों तथा संबंधित सभी पक्षों को धन्यवाद दिया। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने कहा है कि कई चुनौतियों और अनिश्चितताओं को पार करते हुए प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2082 संपन्न किया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा आज समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के तहत निर्वाचित सांसदों को प्रमाण पत्र वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में आयुक्त भंडारी ने बताया कि चुनाव हर साल में कराना है, इस दृढ़ संकल्प के कारण ही निर्वाचन संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और बुद्धिजीवियों से सहयोग मिला। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भंडारी ने यह भी बताया कि इस बार लगभग 10 लाख युवा मतदाताओं ने पहली बार उत्साहपूर्वक मतदान किया। उन्होंने जानकारी दी कि इस निर्वाचन में किसी भी मतदान केंद्र पर पुनः मतदान नहीं कराना पड़ा, जिससे यह स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव रहा। इसी आधार पर नेपाल दुनिया के उन 10 देशों में शामिल हुआ है जहां चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराया। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने फागुन 21 को संपन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन को सफल बनाने के लिए भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों तथा आम नागरिकों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है। आज कर्णाली पहुंचकर उन्होंने निर्वाचन में सहयोग देने वाले सभी को धन्यवाद दिया, ऐसा प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार राम बहादुर रावल ने जानकारी दी। वह निर्वाचन पूर्व निरीक्षण भ्रमण के दौरान कर्णाली नहीं पहुंच पाई थी। प्रधानमंत्री कार्की आज सुबह मुगू जिले के रारा पहुंची, वहां उन्होंने जिला स्तरीय सुरक्षा प्रमुखों के साथ अंतर्क्रिया की। इसके बाद वह जुमला के खलंगा पहुंचकर जिला स्तरीय सुरक्षा प्रमुखों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने समिति, संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रभावी समन्वय और प्रतिबद्धता के साथ निर्वाचन संपन्न कराने के लिए सुरक्षा निकायों और कर्मचारियों की प्रशंसा की। उन्होंने स्थानीय निवासियों से भी मुलाकात और संवाद करते हुए निर्वाचन को शांतिपूर्ण और सफल बनाने में दिखाई गई एकता, सद्भाव और सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद व्यक्त किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री कार्की ने जुमला स्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षा का भी अवलोकन किया। आगामी 3 दिनों में कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश में भारी वर्षा, आंधी, तूफान और हिमपात की संभावना को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने सतर्क रहने की अपील की है। प्राधिकरण ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जोखिम न्यूनीकरण के लिए सचेत रहने का आग्रह किया है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि अगले तीन दिनों में कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में भारी वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। साथ ही दांग, नेपालगंज और लुम्बिनी प्रदेश के तराई क्षेत्रों में तेज गति से आंधी चलने का अनुमान लगाया गया है। विभाग के अनुसार शनिवार तक विराटनगर, धनकुटा और धरान आसपास के जिलों में 119 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज आंधी चल सकती है। आंधी के कारण पेड़ गिरने, कमजोर संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने तथा बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित होने का जोखिम है। प्राधिकरण के उप सचिव राम बहादुर केसी ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों और यात्रियों से अनावश्यक यात्रा न करने, घर का ईंधन बंद रखने, सुरक्षित स्थान पर रहने और वाहन संचालन से बचने की विशेष सावधानी बरतने का आग्रह किया है। विभाग नियमित रूप से मौसम संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनी जारी कर रहा है और सभी से आवश्यक सावधानी अपनाने का अनुरोध किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने सभापति पद से इस्तीफा दे दिया है। ये जानकारी पार्टी कार्यालय ने दी। गत माघ 1 गते सम्पन्न कांग्रेस के विशेष महाधिवेशन में थापा सर्वसम्मत रूप से सभापति निर्वाचित हुए थे। इस बीच कांग्रेस ने केंद्रीय कार्य समिति की बैठक कल शुक्रवार के लिए बुलाई है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने आछाम की ढकारी गांव पालिका के अध्यक्ष प्रकाश बहादुर साउद सहित चार लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया है। सार्वजनिक खरीद एन तथा नियमावली के विपरीत बिना प्रतिस्पर्धा 15,05,000 रूपये का समझौता किया गया और कानून द्वारा निर्धारित सीमा से 58% अधिक अग्रिम राशि का भुगतान किया गया, यह जांच में सामने आया है। ये जानकारी आयोग ने दी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरजे 24 न्यूज के साथ समझौता कर भुगतान नव इंद्रेणी फाउंडेशन को किया गया और फिल्म निर्माण के नाम पर नकली बिल पेश करके खर्च दिखाया गया। कंबोडिया में ऑनलाइन ठगी लगायत और कानूनी कामों में लगाए गए और बिना वीजा रह रहे 20 नेपालियों को उद्धार करके स्वदेश वापस किया गया है। थाईलैंड स्थित नेपाली दूतावास के पहल और कंबोडिया सरकार के सहयोग से उद्धार करके उन लोगों को आज स्वदेश वापस भेजा गया है। चितवन जिले में रक्त की कमी हो गई है। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी चितवन शाखा ने रक्तदान कार्यक्रम आयोजित करने की अपील जारी की है। शाखा के सभापति हरिप्रसाद पौड़ेल द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि जिले के अस्पतालों में उपचाररत मरीजों के इलाज के लिए भी रक्त की कमी हो रही है, इसलिए रक्तदान करने का आग्रह किया गया है। निर्वाचन के बाद रक्तदान कार्यक्रम न होने के कारण जिले में रक्त की कमी हुई है, ऐसा अपील में उल्लेख है। वर्तमान में जिले में प्रतिदिन 150 यूनिट के करीब रक्त की मांग होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब और तेज हो गया है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत एक और बड़ा हमला किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने आज ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत इसराइल पर 64वां हमला किया। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक यह अभियान 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों के जवाब में शुरू किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन के तहत अब तक ईरान 63 बार मिसाइल और ड्रोन से हमले कर चुका था और अब 64वां हमला किया गया है। इन हमलों में इसराइल के सैन्य ठिकानों के साथ साथ पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रतिवेदन 2082 राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के समक्ष किए गए प्रस्तुत। निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न होने से लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, ऐसा राष्ट्रपति को है विश्वास। आगामी 3 दिनों में कोसी, लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश में भारी वर्षा, आंधी और हिमपात की है संभावना। आवश्यक सतर्कता अपनाने का राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण का आग्रह। और ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जारी, इसराइल पर किया 64वां हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।